الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان آیت نمبر 35 سے 60 تک کریں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، تو مکی سورت کا ایک الگ سٹائل ہوتا ہے، اور اسی سٹائل کے مطابق آپ اس میں دیکھیں گے تذکیر بِآلاء اللہ اور بِأَيَّامِ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان سے بھی نصیحت کی گئی اور بِأَيَّامِ اللہ سے بھی نصیحت کی گئی. یعنی ایام اللہ کون سے دن ہیں؟ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر وہ دن مراد ہیں جو کہ پچھلی قوموں پر گزرے جن میں ان پر عذاب آئے. تو دونوں طرح سے تذکیر ہوتی ہے، اور آج ہم دونوں طرح ہی کی تذکیر دیکھیں. پہلے ہم دیکھیں گے بھی ایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کن قوموں کو پر عذاب کیا. بہت مختصراً، ویری بریفلی، ایک ایک دو دو آیتوں کے اندر پانچ قوموں کا ذکر کر دیا گیا، اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے بعد توحید کے دلائل دیے گئے. کس طرح سے؟ بِآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو انسان کے اوپر اس نے کی ہیں، ان کے ساتھ انسان کو تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، اور اس کو کچھ عقل اور ہوش کے ناخن لینے کی تلقین کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں آج کا سبق، سورۃ الفرقان آیت نمبر 35 سے 60 تک. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تورات مراد نہیں ہے، بلکہ توحید کے عقلی دلائل. تو اس لیے کہ اس وقت تو تورات نازل نہیں ہوئی تھی جس وقت کہ یہ بات ہو رہی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کتاب بھی دی. بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ مراد تورات ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب دی. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، دونوں طرح کی تفسیریں ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، اس وقت جس وقت کہ وہ فرعون کے پاس گئے تھے، اس وقت تو نہیں تھی ان کے پاس کتاب. بعض نے کہا کہ نہیں، بعد میں جو کتاب دی گئی وہی مراد ہے. تو دونوں ہی طرح کی باتیں ملتی ہیں. اگر اس سے لیں ہم کہ تورات نہیں مراد، تو مطلب ہے کہ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، ایسی باتیں ان کو سجھا دی کہ وہ انہوں نے فرعون کے سامنے پیش کی. اور وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ بنا دیا ہم نے ہارون علیہ السلام کو وزیر، ان کا یعنی اسسٹنٹ بنا دیا، بھائی کو ان کے ساتھ کر دیا. اور وزیر، میں نے آپ کو بتایا، وزر سے یا بوجھ اٹھانے والا. تو موسیٰ علیہ السلام نے خود اس چیز کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو، ہارون کو، میرا وزیر بنا دے. ہم تو وزیر کو سمجھتے ہیں نا کہ وزیر تو بادشاہ کے قریب جو ہوتا ہے، بہت بڑا عہدہ ہے. حالانکہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ تو بوجھ اٹھانے والا تھا، وزیر اعظم، بڑا بوجھ اٹھانے والا. تو آج بوجھ اٹھانے کے لیے لوگ بیک کرتے ہیں کہ ہمیں بوجھ اپنا اٹھانے دیں، ہمیں وزیر بنا دیں. تو حالانکہ اس کا معنی دیکھیں تو کتنا مشکل ایک چیز ہے، کیونکہ یہ تو قیامت میں پتا چلے گا نا کہ بوجھ اٹھائے تھے کہ نہیں اس نے. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پہ بالکل ہی بریفلی بیان کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، مگر کہیں پہ بھی ایک جگہ کنسولیڈیٹڈ نہیں آپ کو ملتا، بلکہ اسکیٹرڈ ہے پورے قرآن میں. جس طرح کی ضرورت ہے اس کے مطابق، جیسے بات اور جس حالات کی بات کی جا رہی ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی سے کوئی بات لائی جاتی ہے. کیونکہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے نا، کسی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی وہ پیغام لے کر آئے قوم کی طرف اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی، فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا، پھر ہم نے کہا ان دونوں کو کہ جاؤ اس قوم کی طرف، کون سی قوم کی طرف؟ فرعون کی قوم کی طرف، الذين كذبوا باياتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور انہوں نے بالکل، چونکہ آپ کو ڈیٹیل تو پتہ ہے، بالکل مختصراً یہاں پہ بتایا گیا کہ جو اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، فدمرناہم تدمیرا، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ہلاک کرنا یہ ایمفسس کے لیے ہوتا ہے، جبکہ فیل کے ساتھ اس طرح سے مفعول مطلق لایا جائے، دمرناہم یہ کہنا کافی تھا، مگر پھر تدمیرا کہا گیا تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ بالکل ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ پتہ ہے کہ ایک بھی فرعون کا سپاہی زندہ نہیں بچا تھا، پورے کے پورے بالکل ختم ہو گئے، سب غرق کر دیے گئے، ایسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیں، ایسے سمجھ لیں کہ یعنی یہ 35 سے لے کے 44 آیت تک آپ کو یہ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر اور ان کے ساتھ جو ہوا یہ بریفلی بتایا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں ایسے جیسے کوئی البم دکھائی جا رہی ہے نا، البم میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، پھر آگے بھی آپ ان قوموں کا ذکر دیکھیں گے، تو انسانیت کی جو تاریخ ہے اس میں سے قوموں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے انکار کیا، وہ البم آپ کو دکھائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے کے انسان بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، وہ بھی ڈھیٹ اور سرکشی اور ہٹ دھرمی میں مبتلا رہے، اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کے پیغام کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں سنا، نہیں مانا، تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور کیوں ایسا بتایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک پیرنٹس اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو، اس نے پڑھائی نہیں کی، اس کے بعد پھر وہ ایسے ہوا، پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ بیٹا اسے نصیحت حاصل کرو، کسی کی بات دکھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اگر تم بھی یہی کام کرو گے تو تمہاری بھی ہلاکت یقینی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا تو آج کے دور کے اندر اگر کوئی یہی حرکتیں کریں تو کیا ان کے ساتھ کوئی بھلا معاملہ کیا جائے گا؟ کیا ان کو بہت اجر دیا جائے گا؟ کیا ان کے لیے جنت ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا۔ اگر اس قوم نے ایسا کیا اور تباہ ہو گئی تو بعد میں آنے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے تم بھی اس ٹریک پر چلو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کی قومیں پھر کیوں نہیں تباہ ہو رہی، جو لوگ نہیں مانتے وہ کیوں نہیں ہمیں نظر آتے کہ وہ اس طرح سے مٹ جائیں جیسے پہلے مٹے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کے نتیجے میں آج لوگ سروائیو کر رہے ہیں، یہ تمام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت ہے جسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، ایک امت ہوا ہے جنہوں نے انکار کر دیا۔ تو دمر نہ ہوں تدمیرا، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بالکل ہلاک کرنا، وقوم نوح، اور قوم نوح لما کذبوا، جب انہوں نے جھٹلایا الرسول، رسولوں کو، کون سے رسولوں کو؟ ان کے پاس تو صرف نوح علیہ السلام رسول آئے تھے، لیکن رسول کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی قوم اپنے رسول کو جھٹلاتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، اور وجہ کیا ہے کہ سارے رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے، کوئی رسول ڈیفرنٹ پیغام نہیں لے کر آیا، تو جس قوم نے ایک کا پیغام جھٹلا دیا اس نے سب کا ہی جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، تو اس کا مطلب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، تمام ہی رسولوں کو جھٹلا دیا، ایک کو نہیں مانا تو سب کو جھٹلا، جنہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو انہوں نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا نوح علیہ السلام کا انکار کرنا ये क्या था? सब रसूलों को झुठला देना। तो उनका जुर्म बताया गया लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, जब उन्होंने झुठला दिया रसूलों को, यानी रसूलों को ना मानना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और आज के दौर में जो लोग ये कहते हैं, ये भी जरा सही से सुन लें, आज के दौर में बहुत सारे लोग ये, आज ये फितना है कि जो कहते हैं कि हम हदीस को नहीं मानते, तो ऐसे ही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दिया, इसलिए कि हदीस का इनकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार है। अगर हदीस ही नहीं रही तो आपने क्या माना, उनको क्या माना, मतलब है कि वो उस जमाने के रसूल थे, आए तो फिर वो रसूल नहीं रहे ना, क्योंकि जब आपने उनकी बातों को ही इनकार कर दिया तो फिर आपने उनकी रिसालत को कैसे माना, आपके लिए उनकी रिसालत क्या माने रखती है फिर? वो फिर उस जमाने में थे और वही उन सहाबा के लिए थे, उन्हीं को उन्होंने समझाया बताया अपनी तालीमात दी। आज तक अगर हम तक उनकी तालीमात ही नहीं पहुंची हैं तो हमने उनको इसका मतलब रसूल नहीं माना, और अगर माना है तो उस जमाने के लिए माना है, वो आज के लिए रसूल नहीं है। जबकि हम जो अहले सुन्नत हैं वो हम ये मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के लिए रसूल है, और आपकी तालीमात को अल्लाह ताला ने उसी तरह बाहिफाजत पहुंचाया आगे तक जैसे कुरान को पहुंचाया। ठीक है, तो कौमे नूह को भी यही सजा मिली कि अग़रक़नाहुम, हमने गर्क कर दिया उनको, वजअलनाहुम लिन्नासि आया, और हमने बनाया उनको लोगों के लिए एक निशानी। किस चीज की निशानी? इबरत की निशानी, कि जब भी कोई कौम रसूल को, अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है रसूल, जमीन पे अल्लाह का सफीर होता है, अल्लाह सुबहाना ताला ने उसको भेजा होता है अपना पैगाम देने के लिए, जो उसको झुटलाता है उसने अल्लाह के पैगाम को झुटला दिया, उसने अल्लाह की बात को झुटला दिया, क्योंकि रसूल अपनी बातें नहीं कर रहा होता, उसकी कोई पर्सनल बात नहीं होती, वो अल्लाह का पैगाम दे रहा होता है। तो ये इतना बड़ा जुर्म है, तो इबरत की निशानी बना दिया। वह आतना लिज़ालिमीन आज़ाबन अलीमा, और तैयार कर रखा है हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब। जालिम कौन? जुल्म का मतलब क्या होता है? हकदार को उसका हक ना देना। तो जालिम वो हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, तो उनको इस दुनिया में तो अल्लाह तआला ने गर्क कर दिया, आगे भी उनके लिए अजाब तैयार है, अभी अजाब खत्म नहीं हुआ। आदन और आद, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी यही गलती दोहराई जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। वह समूद, और समूद ने वही गलती की जो आद ने की। वह असाबर रास, और कुएं वाले। कुरूनन बैना दालिका कसीरा, और बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारी कौमें जो इनके दरमियान आई वो भी इसी तरह हलाक कर दी गई। अब आप आद और समूद को तो जानते हैं, लेकिन असहाबे रस कौन थे, कुएं वाले कौन थे? तो ये इसके बारे में काफी तफासीर हैं, इनका तذکرہ सूरह काफ में भी आया है और यहाँ भी, मगर तफसील ना तो कुरान पाक में है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, ना उनका इलाका बताया है। या तो ऐसा था कि सहाबा कराम या अरब के लोग बहुत अच्छी तरह इनके बारे में जानते थे, इसीलिए किसी ने कोई सवाल नहीं किया, तो हम भी बेहतर है असहाबे रस ही कह दें तो बेहतर है, मतलब है कि कौम थी जिसका भी यही जुर्म था। वैसे ज्यादातर ने असहाबुल उखदूद का वाकया बयान किया है, आपको पता है जो जो सूरह बुरूज में भी है, जो खंदकों वाले थे, कि ईसा अलैहि सलाम की जब शरीयत चल रही थी तो उस जमाने में उनके मानने वाले, जो ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले यानी उस जमाने के मुसलमान थे, उनके ऊपर एक जालिम बादशाह था, जिसको जब पता चला कि ये एक लड़का है जो तौहीद पर है, और ये सारी बातें आपने सुनी होंगी पहले, तो उसने उसको मारने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़का मरता नहीं था, वो बिल्कुल पक्की सच्ची तौहीद पर था। बादशाह ने कहा, बादशाह से उसने, लड़के ने कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो एक ही तरीका सिर्फ मुझे मारने का, कि सब लोगों को जमा कर लो, फिर मुझे सूली पे चढ़ाओ और मुझे तीर मारो, और ये कह के मारो باسمي ربي هذا الغلام. उस रब के, इस गुलाम के रब के नाम पर हम मारते हैं। तो इस यानी इस लड़के के, गुलाम से मतलब क्या लड़के, इस लड़के के रब के नाम पर। तो उन्होंने ऐसा ही किया, सबको जमा कर लिया और उसको चूल्ही पे चढ़ा के और इस तरह से तीर मारे तो लड़का मर गया। अब जितने लोग वहां पर थे वो सारे के सारे लड़के के दीन पर ईमान ले आए, यानी वो भी मुसलमान हो गए। अब वो काम जो लड़का जिंदा रह के नहीं कर सका था उसके मरने पे हो गया। जब वो सब ईमान ले आए तो बादशाह के लिए तो मसला हो गया, पहले एक ईमान लाने वाला था, अब इतने सारे ईमान ले आए। तो उसने फिर खंदकें खुदवाई और उसने उनमें आग जलवाई और इनको उसमें फेंक दिया। तो असहाब अर्रस, वो जो आग के गढ़ों में फेंकने वाले थे, तो गढ़े को कहते हैं असल में, रस जो था ना गढ़ा, उसी से फिर कुआं भी कहा जाता है। तो ये उनके साथ हुआ था। और इनके दरमियान कई कौमें, इसका मतलब है कि एक लंबी दास्तान है तबाही की। दुख नहीं होता सोच के, थोड़े से गहराई में सोचें, थोड़ा सा दिल के साथ सोचें, दुख नहीं होता अगर आज पता चल जाए कि किसी जगह पर ऐसा कोई तूफान आया, जलजला आया और सारा का सारा शहर तबाह हो गया और कोई एक जानदार भी बाकी नहीं रहा। कितनी बड़ी हेडलाइन बनेगी, कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी वो। लेकिन हम जब ये पढ़ते हैं तो कितने आराम से गुजर जाते हैं ना, कि कुरूनन बैना दालिका कसीरा, हाँ आए होंगे गए होंगे चलो ठीक है। नहीं, इन बातों को आंख और कान खोल के सुनना चाहिए, इन बातों को दिल पे लेना चाहिए कि कितनी बस्तियां हलाक हो गई, कितनी कौमें बर्बाद हो गई, क्यों बर्बाद हो गई, क्या कसूर थे उनके। उन्होंने अपने वक्त के रसूलों का इनकार कर दिया, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। अगर कुरान ने हमें बताए आद और समूद के बारे में, कौम नूह के बारे में, इन कौमों के बारे में, तो हमें कहां से पता चले। तो बहुत सारी तबाह कर दी, कितनी तेजी के साथ हलाकतों का ये सिलसिला चलता ही रहा। चंद जुमलों में अल्लाह ताला ने पूरी तारीख लपेट के रख दी इंसानों की, कि कितनी बीच की सदियों के लोग हलाक कर दिए गए और अल्लाह ताला को परवाह नहीं है। ये कौन है, इसके अंदर बच्चा है कि बूढ़ा है कि कौन कैसा है, बल्कि यह सब हलाकतों के सिलसिले चलते ही गए। इन लोगों ने पिछली कौम से सीखा नहीं। और आप देखिए, इंसान वही अकलमंद है जो दूसरों से सीख ले, जो दूसरों से नसीहत पकड़ ले। जब अपने ऊपर आ जाए और फिर कोई आप नसीहत पकड़े तो क्या फायदा। असल तो समझदारी इसमें है ना, कि जब आप दूसरे को देखें तो फिर आप उससे ही नसीहत ले लें, कि ये ना कि हमारे ऊपर आ जाए। आप देखें, जे हम अपनी औलाद के बड़े हमदर्द होते हैं ना, माँ बाप से ज्यादा औलाद का कोई हमदर्द नहीं है। तो माँ बाप क्या करते हैं, अपनी औलाद को इसी तरह नसीहतें करते हैं ना, कि बेटा देखो फलां को, बेटे देखो फलां, फलां कैसे बर्बाद हो गया, फलां ने ये किया, उसने बुरी सोबत इख्तियार की, या वो इन बुरी बुराइयों में पड़ गया, या वो देखो उसका फ्यूचर तबाह हो गया, देखो उसके साथ क्या हुआ। आप ऐसे करते हैं ताकि बच्चा उसकी मिसाल से समझ ले और इसमें खुद पढ़ के अगर सीखेगा तो तबाह हो जाएगा, दूसरे से सीखेगा तो बच जाएगा। हमारा काम यह है कि हम इन कौमों से नसीहत लें, कि रसूल जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाते, उनका इनकार, उनकी बात का इनकार, उनको झुठलाना मामूली बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी बातों को लाइट लेना, उनकी बातों को कुछ ना समझना, ये अल्लाह की बात को कुछ ना समझना है। वकुल्लन दरबना लहुल अम्थाल, और सबको बयान की हमने इसके लिए मिसालें, हर कौम को हमने तरह तरह की मिसालें देकर समझाया था। जब उनके पास रसूल आते थे उनको समझाते थे, देखो पिछली कौम का हाल देखो, देखो फलां तबाह हो गया, लेकिन किसी पे असर नहीं होता था। और सब तबाही तक जब तक खुद ना पहुंच गए, उस वक्त तक उन्होंने कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ी। जब अपने ऊपर तबाही आ गई तो फिर कहने लगे, ना कुन्ना तो अलीमीन, हम ही जालिम थे, हमने ही गलत किया, हमने ही बुरा किया। लेकिन उस वक्त कोई फायदा था क्या? इंसान अगर अजाब देख के होश संभाले तो कोई फायदा है क्या? तो सबको हमने इस मिसालें दी, यानी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तो चाहा कि वो समझ जाएं, समझाने के लिए उनको बहुत तरीके किए, लेकिन वो नहीं माने। और कुल्लन तबरना तदबीरा, हर एक को फिर हलाक कर दिया हमने, हलाक करना। अब देख लें आप, जितने अजाब, जितनी बातें हमारे सामने आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसे करेगा उसके लिए ये तबाही है, उसके लिए वैल है, या उसके लिए दर्दनाक अजाब है, या वो हम में से नहीं है। अब उसके बाद पढ़ के इंसान कितना इसको लाइटली ले ले अगर, और सोचे कि कुछ नहीं होता, सो वॉट, तो क्या वो अपने लिए कर रहा है तबाही का सामान? वलकद अताउ अलल करियति लती उमतिरत मतरसौ, और अलबत्ता तहकीक वो गुजरते हैं उस बस्ती पर से। असल में जब अरब लोग जाते थे ना, ये सारी वही बस्तियां बयान की गई हैं जिन पे से ये अरब लोग गुजरते थे, जो जानी पहचानी थी इनके लिए। अच्छा, या आद हो, समूद हो, साबर्रस हो, लेकिन ये लोग जाते थे उनके उन कौमों पे से गुजरते थे, तो अलबत्ता तहकीक वो गुजरते हैं उस बस्ती पे से। कौन सी बस्ती? अल्लाह ताला ने उसका नाम भी नहीं दिया। अल्लाह अकबर, कौन सी बस्ती? अल्लती उमतिरत मतरसौ, वो जो बरसाई गई बारिश बुरी, जिनके ऊपर बुरी बारिश बरसाई गई, कौन सी वो बस्ती थी? कौम लूत, यानी पांच बस्तियों का तो, पांच लोगों का तो जिक्र नाम लेके कर दिया गया, बाकी बहुत सारी तबाह हुई और एक का तो नाम ही नहीं लिया गया। अफलम यकूनु या रौना, क्या भला नहीं वो थे देखते उसको? जब डेड सी के पास से गुजरते हैं तो क्या उनको देखते नहीं थे? क्या उनको नजर नहीं आता कि ये बस्ती कैसे तबाह हो गई? अल्लाह अकबर, आज भी लोग जाते हैं उस जगह देखने के लिए। हम लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि कैसे एक बस्ती इस डेड सी के नीचे, इसका नामो निशान गुम हो गया, और इनके ऊपर सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई थी। अल्लाह अकबर, इनको उठा के ऊपर से नीचे दे मारा गया था, कुछ बचा होगा उनका क्या? ऑन टॉप ऑफ इट पत्थरों की बारिश की गई। कौन है जो इस अंजाम तक पहुंचाने वाला था? कौन है जो पकड़ने वाला था उनको? समझ नहीं आती? इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला को कितनी नफरत होगी उनके इस अमल से जो वो करते थे, कि अल्लाह ताला ने उनका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। बल्कि अनुला यर्जुना नुशूरा, बल्कि वो थे कौन जो सारे जितने भी गुजरे हैं सब जिनका जिक्र हो, ला यर्जुना नुशूरा, वो नहीं खौफ रखते थे, नहीं उम्मीद रखते थे किस चीज की? जी उठने की। यानी क्या मतलब? मरने का यकीन तो सबको होता ही है, लेकिन दोबारा जी उठने का यकीन नहीं होता। कानू जो है ना, काना यकूनू, ये इस्तमरार के लिए, यानी वो गुजरते रहते थे, गुजरते रहते थे, देखते थे, बार बार देखते थे, फिर भी नसीहत हासिल करते थे, एक दफा नहीं। और वो कानू ला अर्जुना नहीं थे, वो सारी जिंदगी उनको यकीन ही नहीं आया, कोई उनको उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा कभी जी उठेंगे। आपको पता है, एक देखना होता है आखरत के यकीन के साथ, और एक देखना होता है बेयकीनी के साथ। जब इंसान आखरत के यकीन के साथ देखता है ना किसी ऐसी तबाह हाल बस्ती की तरफ, तो उसको डर लगता है, वो अपनी फिक्र में पड़ जाता है, फिर उसको ये होता है कि मैं भी नसीहत हासिल करूं। जब आखरत का यकीन नहीं होता ना, तो फिर ये चीजें तो एक बस खेल तमाशा ही है, बस ठीक है, एक कौम तबाह हो गई और दूसरी आ गई तो क्या हो गया, तबाह तो होती रहती है, ऐसी तबाहियां तो आती रहती हैं। फिर ढूंढते हैं कि क्या इसके कौन सी प्लेट्स हिल गई थी, जो सुनामी आ गई, जलजला कहाँ से शुरू हुआ था, कितने स्केल का था, क्या था, वो इसमें ही पड़ जाते हैं। लेकिन जब आखिरत का यकीन होता है ना, तो इंसान की नजर ही बदल जाती है। तो जो ये समझते हैं कि मर जाना एंड है, उनको पता चल जाए कि अगर पता चल जाए कि 5 दिन रहते हैं मेरे, मसलन 5 दिन रहते हैं मेरे मरने में, तो उसको तो ये यकीन नहीं है ना कि दोबारा उठना, तो वो कहेगा आज जी लो, मजा कर लो, मेरे पास तो 4-5 दिन ही है, बस सारी अपनी जिंदगी इन 4-5 दिनों में जी लो, फिर वो जो चाहेगा करेगा। और जिसका ये यकीन है कि इस मरने पे एंड नहीं होना, दोबारा जी उठना है, एक अगली जिंदगी को स्टार्ट होना है, वो फिर इन 5 दिनों में कहता है जल्दी जल्दी मैं अपने लिए आगे के लिए तैयारी कर लूं कि मुझे वहां पेश होना है। बहुत फर्क पड़ता है जब इंसान का यकीन हो और जो यकीन के बगैर जिए। मौत को समझे है गाफिल, इख्तताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवामे जिंदगी। ये मौत जो है ना, जो गाफिल है वो ही समझता है कि ये जिंदगी का इख्तताम है, इख्तताम थोड़ी है, ये तो एक नई जिंदगी की शुरुआत है, ये समझ नहीं आती। वो दोबारा जी उठने में निशूर है, जी उठना, दोबारा जी उठने पे उनका ईमान नहीं था। और इसी को समझते थे बाबर बयाश कोश, कि आलम दोबारा नीस्त, यहाँ पे जी लो जितना जीना है, दोबारा थोड़ी जिंदगी मिलनी है। तो वो जिंदगी को इस तरह गुजार के गए। और देखें आप, आखरत पर जब यकीन नहीं होता, तो तबाही की ये दास्तानें भी इंसान को सीधा नहीं करती। फिर एक ही इवेंट होती है, फिर आंखें नहीं खुलती इनको देख के भी। आज भी देखें, कौन सी चीज है जो इंसान से नेकी करवाती है और मुखालफत के बावजूद उसको चलता रखती है? कौन सी चीज है जो हिम्मत बंधाती है कि नहीं, चलते रहना है, अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ना मैंने? कौन सी चीज है बताएं? आखरत पे ईमान, कि आखिर तो इन सब लोगों ने मुझे छोड़ जाना है, मैंने तो अल्लाह के आगे अकेले ही खड़ी होना है। ये ईमान है ना जो चलाता है, यही ईमान है ना जो करेज देता है, हिम्मत देता है कि नहीं, चाहे सारे मेरे मुखालिफ हो जाओ, मेरे चाहे कोई एक्सेप्टेबिलिटी ना रहे इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में, आई डोंट केयर, मेरे साथ तो ये कब्र में नहीं जाएंगे, मैं कब्र में कैसे हिसाब दूंगी, मेरे घर वाले चाहे मेरे मुखालिफ हो जाएं, मुझे नहीं परवाह। ये यकीन है ना जो दौड़ाता है हमें, जो मेहनत कराता है, जो चलाता है। और जितना ये यकीन कम होता है, उतना ही इंसान का अमल कम हो जाता है। अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते पे जो स्पीड है ना, वो कम हो जाती है। तो ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि इंसान का यकीन कितना है, वो कितनी हद तक अपनी आखरत को सीरियस समझता है। ऐसे ही क्या समझता है जैसे सूरज का निकलना, और ये हम सबको यकीन है कि कुछ 8-10 घंटे बाद शाम हो जानी है, रात हो जानी है, अंधेरा हो जाना, सबको यकीन है ना। इसी तरह क्या यकीन आखरत पे भी है कि कयामत आ जानी है और मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना? जब ये एहसास नहीं होगा, तो क्यों कोई रिस्ट्रिक्टेड जिंदगी गुजारेगा? फिर तो मन मानी जिंदगी होगी, मन चाही जिंदगी होगी। जो भी दिल करेगा फिर इंसान वो करेगा, जो अकल में बात पड़ेगी वो करेगा, जो नहीं पड़ेगी नहीं करेगा। तो आजादी आजादी, बगैर किसी रोक टोक के जिंदगी होगी। और फिर इंसान अपनी अकल को खुदा बना लेता है, वो खुद परस्ती करता है, खुदा परस्ती नहीं। आगे इसकी बात आ रही है। जो आखिरत पे यकीन रखता है वो तो डर डर के चलता है जिंदगी में। किस चीज का डर? अल्लाह तला से मुलाकात होनी। मैं किसी की बंदी हूं, मैं आजाद नहीं हूं, मैं गुलाम हूं। ये रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है ये, फिर उसकी ये जिंदगी कैद खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन तो यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजारता है, ये खाना है ये नहीं खाना, ये बोलना है ये नहीं बोलना, इधर ये देखना है ये नहीं देखना, इसमें टाइम स्पेंड करना है इसमें नहीं करना, ये पहनना है ये नहीं पहनना। इतनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है ना, वो तो फूंक फूंक के कदम रखता है। तो ये अकीदा आखरत ना टोटली इंसान की लाइफ को चेंज कर देता है। किससे क्या मामलात करने हैं, किससे साथ ताल्लुक रखना है, किससे साथ ताल्लुक नहीं रखना, कहाँ ये रिश्ता हलाल है कहाँ हराम रिश्ता है, ये तो बहुत चीजें देखभाल के चलता है। ऐसे थोड़ी जो मर्जी करो, वो तो उनकी जिंदगी होती है जिनका आखरत पर ईमान नहीं होता। आज आप माशरों में क्या देख रहे हैं, आपको नजर आता है ईमान आखरत पर है या नहीं? यह बहुत ही कमजोर है, यहाँ सिर्फ बराए नाम है, सिर्फ अल्फाज हैं कि हमारा आखरत पर ईमान है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि आखरत पर ईमान रखने वाला माशरा है? आप देखेंगे कि अक्सरियत ऐसा लगता है कि आखरत पे कोई ईमान ही नहीं, जी उठने पे कोई ईमान नहीं। इंसान की जिंदगी से ही पता चलेगा ना कि ईमान है या नहीं, उसकी जिंदगी से इजहार होता है, डिपिक्ट करती है उसकी जिंदगी। तो ये इन सब कौमों का एक कॉमन प्रॉब्लम था, वन कॉमन प्रॉब्लम, असल खराबी जड़ क्या थी? आखरत का यकीन नहीं था। इसीलिए रसूल को मानना ना मानना उनके लिए कोई बात ही नहीं थी, रसूल को रिजेक्ट कर देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। व इदा रऔका अन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ूवा, और वो जब आपको देखते हैं तो नहीं आपको बनाते मगर मजाक, मजाक करते थे। मजाक किसका उड़ाया जाता है? जिसको इंसान अपने से कमतर समझता है, हकीर समझता है, कमजोर समझता है और समझता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसी का मजाक उड़ाया जाता है ना, हल्का जिसको इंसान समझता है। इसीलिए मजाक उड़ाने से मना किया गया कि किसी का तमस्कर ना उड़ाओ, कभी किसी की शक्ल का, कभी किसी के नाम का, कभी किसी के खानदान का, कभी किसी के पहनने ओढ़ने का, कभी किसी के आदात का, हंस हंस के उसके ऊपर और मजाक उड़ाना उसका, ये जाहिर करता है कि आप उसको हकीर जानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। ये काफी है तकब्बुर को जाहिर करने के लिए, ठीक है? आइंदा बहुत सोच समझ लीजिएगा जब आप किसी का मजाक उड़ाने लगे, कि इसी को तो तकब्बुर कहते हैं, क्योंकि इंसान मजाक नहीं उड़ाता उसका जिसको कि वो अपने बराबर समझे या अपने से बढ़ के समझे, जिसको हकीर समझता है ना, हल्का समझता है, उसका ही मजाक करता है। तो क्या हम किसी काबिल हैं कि दूसरों को हकीर समझे? सवाल तो ये है। और पता नहीं ये चीज हमें अल्लाह की नजरों में हकीर ना बना दे। तो वो जब नबी अलैहिस्सलाम को उन जैसी जात तो कोई है नहीं, इंसानों के अंदर कामिल इंसान अगर कोई है वो तो नबी अलैहिस्सलाम की जात है, उनका मजाक बनाते थे। इससे पता चलता है कि अगर आपका कोई मजाक बनाता है ना तो इतने रंजीदा ना हो, इतना गम ना करें। हमारे नबी का मजाक बनाया गया, उनको तजहीक का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर लोग हंसे, तो हम क्या चीज है फिर? तो जब भी आपको देखते हैं उनको और तो कुछ आता नहीं, क्योंकि आपकी बात का दलील से तो जवाब दे नहीं सकते थे, तो एक और क्या तरीका होता है, हंसना शुरू कर दो किसी पे, मजाक उड़ाना शुरू कर दो। आज भी बाज दफा जब लोग दीन पे चलने लगते हैं, दीन की तरफ नए नए आते हैं, तो उनके जो पुराने दोस्त या जो रिश्तेदार जो हटे होते हैं इस रास्ते से, उनके पास चूंकि कोई और तो तरीका होता नहीं इनको हटाने का, तो वो क्या करते हैं, उनका मजाक करने लगते हैं। और क्या कहते थे, अल्लाह बाद अल्लाह रसूला, इसको बनाया अल्लाह ने रसूल। बड़ी जैसे कि बहुत हैरत की बात है, ये है जिसको रसूल, ये इस काबिल है, नऊज़ुबिल्लाह, ये कहना चाहते थे। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। इनकाद लयुदिल्लुना अन आलिहतिना, और बेशक करीब है, ये उन्हीं की बात चल रही है, ये पिछली बात से कंटिन्यूएशन है कि वो कहते हैं अहदल्लज़ी बाथ अल्लाह रसूला, फिर कहते हैं इनकाद लयुदिल्लुना अन आलिहतिना, ये करीब था कि बेशक ये तो हमें भटकाने लगा था हमारे इलाहों से, हमारे खुदाओं से, ये तो हमें हटाने लगा था, ये तो हमें गुमराह करने लगा था। लौला अन सबरना अलैहा, अगर हमने ही ना सबर किया होता ना, तो हम तो इसके रास्ते पे चल पड़े थे, फिर हम तो भटकने लगे थे, इसने तो हमें हटा ही दिया था हमारे इलाहों से। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अब उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का जवाब देने के लिए जब कोई दलील भी नहीं थी, तो तासुब, बस प्रेजुडिस थे, हट धर्मी, कि हमने तो बस यही करना है, इसी पे रहना है, तो हमने ही सबर किया। सबर का माना आप यहाँ पे समझ रहे हैं? आप सबर का जो एक माना है, जमे रहना, इस्तकामत। और ये भी नहीं कि सिर्फ थोड़े दिन जमे रहे, सबर किया, उसके बाद कहा अब नहीं मुझसे सबर हो रहा, मैंने बहुत सबर कर लिया, तो आपने सारा ही सबर जाया कर दिया फिर पिछला भी। इसलिए कि सबर तो एंड तक करना होता है। आप देखे ना, एक बंदा दौड़ रहा है और वो एंड में जगह का, नहीं जी मुझसे नहीं अब दौड़ा जाता, अब तो मैं बड़ा दौड़ दौड़ चुका हूं, बहुत दौड़ चुका हूं, अब तो फिनिश लाइन करीब है। इस तरह ही आप अगर सबर ना करें, आप कोर्स में आए, अच्छा बहुत पढ़ लिया, इतने पारे पढ़े, अब नहीं मुझसे और होता, तो आप छोड़ जाए, ये बेसब्री है। एंड तक जमे रहना, उसको सबर कहते हैं। आप देखिए खाना बना रही हैं, आप कहें मैं तो 1 घंटे से बना रही हूँ, अब नहीं मुझसे खड़ा हुआ जाता गर्मी में, छोड़ छाड़ के चली जाए, वो किसी काम का नहीं, जो पिछला बनाया ना वो भी जाया, क्योंकि तो आपने कंप्लीट ही नहीं की अपनी जॉब, तो पिछला भी जाया हो जाता। लिहाजा सबर आखिर तक करना होता है, सबर का मतलब इसीलिए तो है, एक मतलब है जम जाना, इस्तकामत, कि इंसान जो काम शुरू करे फिर उसके ऊपर जमा रहे एंड तक, और वो डटे रहे थे इसी तरह, ढीठों की तरह, वो लाजवाब तो हो चुके थे, कहते अब हमने ही सबर किया बस अपने खुदाओं के ऊपर। अब देखें अल्लाह अकबर, सोचूं कि अगर वो गलत के ऊपर इस तरह सबर करके जमे रहे, जबकि उनके पास कोई भी दलील नहीं थी, और आज भी देख लें जो मुशरिक है उसके पास कोई दलील नहीं, लेकिन जमे में ढीठों की तरह उनके पास पैगाम पहुंच भी जाए, अब तो हमारी सुस्ती होती है, हम नहीं पैगाम पहुंचाते। लेकिन जिनके पास पहुंच भी जाता है, उनके अपने दीन के ऊपर चलने का एक ही सिर्फ सबब होता है, और वो है ढिठाई, ढिठाई के साथ जमे रहना, अदरवाइज उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि हम क्यों इनकी पूजा करते। इस शिर्क का कोई भी दलील है ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया ना आसमानों में ना जमीन में, कहीं पे तुम्हें शिर्क की तो दलील मिलेगी ही नहीं, कि आप कहीं से शिर्क का प्रूफ ले आए कि अल्लाह के साथ है कोई और भी है, इसकी नहीं कोई दलील मिलती उनको। लेकिन क्या चीज होती है जो उनको अपने दीन पे जमाए रखती है? उनकी ढिठाई, उनका सबर, उनका जमे रहना, इस्तकामत, गलत पे भी इस्तकामत। बस तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो गलत पे जमे रहते हैं, तो हम सच पे क्यों नहीं जमे रहते? हम मानते हैं कि ये सच्चाई है, हम मानते हैं कि दुनिया की हर मजहब इस वक्त खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आए थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं, इस्लाम सिर्फ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि कयामत के दिन जो इस इस्लाम के अलावा कोई भी दीन लेकर आया, यानी जब इस्लाम आ गया, इसके बाद इसका ऐलान हो गया, इसके बाद कोई भी दीन लेकर आया तो उसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तीसरे पारे के एंड में देख ले, उसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं अब तो वही गैर इस्लामी दीन है, फलन युकबल मिन वहुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन, वो आखरत में खसारा पाने वाला होगा, जो लेकर आएगा कोई भी और दीन कबूल ही नहीं होना। तो लिहाजा जब हम ये मानते हैं कि यही दीन सच्चा है, या तो ये कह देना, बाज लोगों को तो इतनी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला इल्मी है कि वो कहते नहीं जी सारे ही ठीक है। जिस दिन आपने कह दी ना सारे ही ठीक है, तो ये जो ला इलाहा है इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ऊपर तो आपका ईमान ही खत्म हो गया, इसलिए कि सारे ठीक नहीं है। ला इलाहा जो था इसके ऊपर ईमान खत्म है। हमने तो पहले नफी करनी है सबकी, सबकी नफी है, पहले इनकार है, फिर आप इकरार करते हैं इल्लल्लाह। तो जब इनकार ही नहीं किया, जब सारे ही ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कलमा ये नहीं फरमाया अल्लाह इलाह है, ये भी हो सकता था कलमा, लेकिन क्या है हमारा कलमा ला इलाह। तो सब का इनकार करना जरूरी है, या आप सबको कहें कि सब गलत है, सब फॉल्स जो अल्लाह की तरफ से आए थे वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके अंदर भी इतना चेंज आ गया कि वो भी जो भी उन्होंने खुदा बनाए हैं वो खुदा नहीं है। फिर उसके बाद कहें इल्लल्लाह। तो जब हमारा ईमान है कि हमारा दीन ही सच्चा दीन है इस दुनिया में, उसके बावजूद फिर हम इस पे जमे ना, ये कैसी बात है, वो अपने झूठ पे जमे हुए, हम सच पे भी नहीं जमते, या तो फिर हमें इसकी सच्चाई में कोई डाउट है, या क्या बात है, जिस चीज को हम सच समझ लेते हैं उस पर तो इंसान जम जाता है। हम तो बार बार भागते हैं इसको छोड़ के, इसको सर से उतारते हैं, इसको अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते कि लोग पहचाने कि ये है इस्लाम वाले, ये है मुसलमान, जहां जाऊं पता चल जाए। हम नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमारा और दूसरे का पता ही ना चले, बल्कि लोग अच्छा है हमें मुसलमान समझे ही ना, कुछ और ही समझ लें, जैसे वो है वैसे ही समझ लें। तो वो शिर्क करके भी अड़े रहे अपने गलत कारी पे, और आज का मुसलमान हक पे नहीं जमने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वसौफ यालमूना हीना यरौना अलआज़ाब मन अदल्ल सबील अदल्लु सबीला, कि अनकरीब उनको पता चल जाएगा जब वो अजाब देखेंगे ना कि कौन है भटका हुआ रास्ते के तबार से। वो कह रहे थे ना इसने हमें भटका दिया होता, यानी वो समझ रहे हैं ये भटकाने वाला है, ये हमें उल्टे रास्ते पे ले जाता, हम तो सही रास्ते पे, तो उस वक्त पता चल जाएगा, अजाब आएगा ना, फिर सब समझ आ जाएगी कौन भटका हुआ था और कौन सीधे रास्ते पे था। वही बात है ना कि अजाब को देखकर तो सभी समझ जाते हैं। इवन फिरौन ने भी कहा था, जो इतना सरकश था, इतना सरकश था, उससे ज्यादा सरकश इंसान इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो फिरौन था, और वो तक मान गया कि अब मैं ईमान लाता हूं मूसा के रब पे, जब उसने अजाब को देख लिया। तो अंदाजा कीजिए कि अगर फिरौन जैसा भी मान जाता है तो कोई भी इंसान तो फौरन मान जाएगा, जू ही अजाब को देखेगा, जू ही मौत के फरिश्तों को देखेगा, लेकिन तब समझने का कोई फायदा है? और आई तो मन इतखा इलाह हुआ बाहू, क्या तुमने उसको देखा है, यानी हैरत की बात है, क्या तुमने उसको देखा है जिसने अपना इलाह किसको बनाया, अपनी ख्वाहिश नफ्स को। ख्वाहिश नफ्स भी इलाह होती है जी, ख्वाहिश नफ्स कैसे इलाह होती है, क्या मतलब होता है उसको खुदा बनाना, कि इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ वो ही करना चाहे जो उसका दिल चाहता है, ये होता है ख्वाहिश नफ्स को इलाह बनाना, यानी जो उसकी ख्वाहिश कहती है ना, जो उसकी मर्जी है, जो उसका शौक, जो उसके उसका दिल करता है, बस वो ही करे, उसको कोई केयर नहीं है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बस जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए, और उसकी ख्वाहिश टकराती हो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह ताला का हुक्म कुछ है और वो, क्योंकि जो अल्लाह ताला के अहकामात है ना वो सब बहुत बैलेंस्ड है, जब इंसान उस बैलेंस को तोड़ के अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे जाता है, इतदाल से हट जाता है। अब इसकी मैं अब इस एग्जाम्पल कैसे बताऊं आपको कि ख्वाहिश नफ्स जो है ना, ये पूरी जिंदगी पे मुहित है ये बात कि जब ख्वाहिश नफ्स को इंसान इला बनाता है पूरी जिंदगी पे इसका असर होता है। मिसाल के तौर पे क्या देखना है, अब मैं क्या वॉच करूं? एक ये कि मैं अल्लाह की मर्जी जानूं, क्या वॉच करना चाहिए क्या नहीं, किस तरफ देखना चाहिए किधर नहीं। दूसरा यह कि मैं अपनी मर्जी करूं, खुद परस्ती या खुदा परस्ती। खुद परस्ती वो है कि बस खुद परस्ती ही है ना, ख्वाहिश नफ्स को इलाह बनाना, खुद को पूज रहा इंसान, अपने आप को पूजता है। और आज सबसे बड़ा खुदा ये है, या तो मटेरियलिज्म है, वो भी असल में ख्वाहिश नफ्स ही है, क्योंकि ख्वाहिश ही अपनी ख्वाहिश कहती है इसके पीछे चलो, ये सबसे बड़ा बुत है। लोग आजकल पत्थरों को नहीं पूज रहे, ख्वाहिश नफ्स को पूजते हैं। तो इंसान कहता है कि जो मेरा दिल करेगा मैं वो देखूंगा, वो मैं पढ़ूंगा, मुझे कौन रोक सकता है, और मेरी मर्जी होगी, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, तो लिहाजा मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या देखना है क्या नहीं, आई डोंट केयर। इसी तरह क्या सुनना है, ये फैसला कौन करे, मैं खुद करूंगी या मैं अल्लाह ताला की तरफ देखूं कि उसने किस सुनने को, क्या चीजें सुनने को उसने जायज कहा है और क्या नाजायज है। इसमें ये है कि जो मेरा दिल चाहता है मैं वो सुनना चाहती हूँ, जो मेरा शौक है मैं वो सुनना चाहती हूँ, या जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सुन सकते और ये नहीं सुन सकते, तो मैं उसका लिहाज रखती हूं। जुबान क्या बोलेगी, मेरी जुबान है मैं जो मर्जी बोलू, ये आपका ख्याल है, या ये जुबान तो अल्लाह ने दी है, जो उसकी मर्जी होगी वो ही बोलना। मेरी जुबान स्लिप हो सकती है, मेरी जुबान गलत कर सकती है, गलत बातें कर सकती है, लेकिन मेरा ईमान यही है और मैं मानती हूं अपनी गलती को कि जो है मेरी जुबान गलत बोल जाती है, मगर मैं इस पे हठ धर्मी नहीं करती कि मेरी मर्जी मेरी जुबान है मैं जो मर्जी बोलू, ये नहीं। ठीक है, जब तक इंसान, गलतियां सबसे होती हैं, कि जब तक इंसान का ये मानना है ना कि ये मेरी जुबान, ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, ये मेरे अल्लाह की अमानत है, मैंने वो ही देखना वो ही सुनना वो ही बोलना है जो मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है। हाँ कहीं फिसल जाए वो अलग बात है, इंसान उठे और तौबा कर ले, लेकिन ये ना कहे मेरी जुबान मेरी मर्जी, मेरा जो दिल करेगा मैं बोलूंगी, चाहे किसी को ताने दूं, चाहे किसी की गिबतें करूं, चाहे किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि अल्लाह का हुक्म क्या है, बहुत हमें समझ है। नहीं, तो जुबान से बोल निकालने वक्त क्या अल्लाह की मर्जी को मलहूज़े खातर रखते हैं या अपनी मर्जी। फिर पहनना है, क्या पहनना है ये अल्लाह ताला बताएगा या मैं खुद डिसाइड करूंगी। मुझे लगता है कि आज के जो फैशन है मुझे वो ही पहनना चाहिए, ये क्या बैकवर्ड सी बातें हैं, ये नहीं मुझे पसंद। नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं मेरी ख्वाहिश चलेगी, मेरी मर्जी क्या है, मेरी मर्जी तो ये है कि भाई आज की मुझे फैशन के मुताबिक चलना चाहिए और मैं वही करूंगी, तो किसको पूज रहे हैं फिर जिंदगी में। इसी तरह खाने पीने में देख लें, क्या हलाल क्या हराम, हलाल हराम की कैद वो ही समझता है जिसने अल्लाह की मर्जी पे चलना, और जिसको अल्लाह की मर्जी पे नहीं चलना तो डोंट केयर, हलाल मिले हराम मिले आई डोंट केयर, क्योंकि दिल कर रहा है ना वो खाने का, ख्वाहिश नफ्स है, दिल करता है खाने का वो खा लिया। मैं हम नहीं ये छोड़ सकते, ये खाने नहीं छोड़ सकते, जो बाहर जबीहा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम तो खाएंगे। फिर जिंदगी, जिंदगी का मकसद क्या है, ये मैं डिफाइन करूंगी या अल्लाह ताला ने मेरे लिए डिफाइन कर दिया है, क्या मैं डिसाइड करूंगी। दुनिया दुनिया में मैं क्यों आई ये मुझे कौन बताएगा? अगर तो अल्लाह ताला की पूजा करते हैं और उसको खुदा समझते हैं तो फिर उससे पूछेंगे मुझे क्यों तूने भेजा दुनिया में, मेरा क्या मकसद है और मैंने उस मकसद को पूरा करना। और अगर अपनी ख्वाहिश को खुदा बनाया हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर मेरा जो दिल करेगा मैं वही मकसद समझूंगी। मेरा तो समझ में यही आता है कि जिंदगी एक दफा मिली है भाई, खाओ पियो मौज करो, ये है जिंदगी। ये मेरा अपना फलसफा है, मैंने अपनी खुद बनाई हुई है सोच और मैं इसी के ऊपर चलती हूँ। तो फिर क्या मतलब है, ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया। समझ आ रही है बात कि ख्वाहिश नफ्स को इंसान खुदा कैसे बनाता है? तो इंसानों की आज कसीर तादाद अपनी ख्वाहिश पे चल रही है, उन्होंने अल्लाह ताला को खुदा नहीं बनाया, वो तो कोई वो और ही खुदा बना के बैठे हुए हैं भाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आसमान के नीचे जितने भी माबूद पूजे जाते हैं, कोई ईसा अलैहि सलाम को पूज रहा है, कोई बुतों को पूज रहा है, कोई किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ, कोई दरख्तों को पूज रहा है, कोई सांप को पूज रहा है, कोई चूहे को पूज रहा है, कोई जितने भी माबूदों की पूजा की जाती है उनमें अल्लाह के नजदीक बदतरीन वर्स्ट माबूद ख्वाहिश नफ्स है जिसकी पैरवी की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं तुम्हारे बारे में इस चीज से डरता हूँ, ख्वाहिश नफ्स से, तुम्हारे बारे में ख्वाहिश नफ्स से डरता हूँ, लंबी उम्मीदों से। ये लोग ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल पड़ेंगे, पर नफ्स तो फिर कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता। आप देख रहे हैं इसको तो कोई लगाम है ही नहीं है, ये तो आज एक चीज की ख्वाहिश दूसरी की, तो इसने हटना नहीं। ये कहा जाता है कि ख्वाहिश के पीछे चलने वाला ऐसे ही जैसे खारिश में मुब्तला शख्स होता है। अच्छा वो क्या करता है, उसको आप रोके ना कि खारिश ना करो और बढ़ जाएगी, वो कहता नहीं, वो इधर खारिश करता है वो आगे और हो जाती, आगे खारिश करता है और बढ़ जाती, आगे खारिश करता है और बढ़ जाती। वो खुजाना बंद ही नहीं कर सकता क्योंकि वो एक जगह खुजाता है ना, अगर वो एक जगह रेजिस्ट कर लेता तो आगे ना बढ़ती, लेकिन वो एक जगह शुरू करता है तो सारी जगह आगे से आगे फैल ही जाती है, वो फिर हट ही नहीं सकता। ख्वाहिश नफ्स भी ऐसे इंसान को पागल ही कर देती, आप एक पूरी करेंगे दूसरी, दूसरी पूरी करेंगे तीसरी, नफ्स फैलता ही जाता। तो तुमने उसको देखा है जिसको कि जिसने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया? तो ये जो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा खौफ ये नफसानी ख्वाहिशात के इतबा का है अपनी उम्मत के ऊपर कि सब इस तरफ चल पड़ेंगे। और आज देखिए बुतों को नहीं कोई पूज रहा, लेकिन हर एक मेरी मर्जी, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मुझे कौन बताएगा, हमें सब पता है, हमें कुछ चीज बताने की जरूरत है? क्यों लोग कुरान को नहीं पढ़ना चाहते, क्यों नहीं सीखना चाहते, वो अल्लाह की मर्जी नहीं जानना चाहते? भाई अल्लाह की मर्जी वही जानेगा ना जिसने उसकी मर्जी मुताबिक जिंदगी गुजारनी हो। वी डोंट केयर, हमने तो मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने तो अपनी मर्जी से गुजारनी, तो हमें क्या मुसीबत है कि हम ये पढ़े? जब ये थिंकिंग हो जाए तो खुद बताइए फिर किसको माबूद बनाया हुआ है? हम कहते खुद को मुसलमान है लेकिन क्रीप इन कर गया हमारे अंदर शिर्क, जब हमने बुत अपने दिलों में खड़े किए हुए अपनी ख्वाहिशाते नफ्स के। हमारा जिस तरह दिल करता है हम वैसे कमाइयां करते हैं, जो दिल करता है वो पहनते हैं, जो दिल करता है खाते हैं, जैसे दिल करता है जिंदगी गुजारते हैं। और ना हम ये जानने की जहमत गवारा करते हैं कि मेरे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मेरे लिए क्या हुक्म दिया है, मैं जान तो लूं, इसलिए नहीं जानना कि किसको परवाह अमल करने की, किसने उन चीजों को मानना है। इस कुरान पे किसी ने चलना हो तो उसको फिक्र होना कि भाई मैं देखूं कि क्या इसमें लिखा हुआ, मेरे अल्लाह ताला के क्या हुक्म है। कहते नहीं नहीं भाई इसको बंद ही रखो, ऐसे ही बाद में अमल करना पड़ेगा, किसी ने तो मुंह से ही कह दिया, हमने अमल तो करना नहीं तो क्या फायदा फिर पढ़ने का। खुद सोचें कि मेरे मुंह पे किसी ने ये कहा, अमल करना ही नहीं है तो क्या फायदा। यानी दे हैव डिसाइडेड कि हमने अमल तो अपनी ख्वाहिश पे ही करना। हाँ कहीं चलते चलते चलो कहीं कोई एक अल्लाह की बात भी हो गई दिल की तसल्ली के लिए, वो भी अपनी ख्वाहिश नफ्स है कि को भाई ये पढ़ लिया तो इससे जो है ना दिल को सुकून हो जाएगा, ये पढ़ लिया तो इससे अपना मसला हल हो जाएगा, तो चलो वो थोड़ा बहुत कर लिया, वो भी अपनी ख्वाहिश नफ्स। बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दीन में, बाकी से जान छुड़ाना चाहते, इसका जरा सा भी हमारे ऊपर कोई असर नजर नहीं आना चाहिए जब हम बाहर निकले। कोई ना जाने कि ये मुसलमान है, किसी को पता ही ना चल सके हम ऐसे हो जाए। अगर ये ख्वाहिश है तो किस चीज के मुसलमान है फिर हम? अब देख लें, एक बंदा जानता हो कि सिराते मुस्तकीम वो है जो अल्लाह की मर्जी का रास्ता है, राइट? सबको पता है ना, इतना तो हर एक को पता है कि सब सिराते मुस्तकीम है जो अल्लाह की मर्जी का रास्ता है, और दूसरा रास्ता टेढ़ा है जो ख्वाहिशात का रास्ता है। सिराते मुस्तकीम का एंड जन्नत है और ख्वाहिशात की मंजिल जहन्नम है, फिर भी इंसान समझते हुए ख्वाहिशात पे चलता रहे। बस आज हमारी यही चीज रह गई है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया ना, तो इसीलिए तो इसका दर्जा इतना, और इसीलिए तो इसके लिए जन्नत है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर ख्वाहिशात को रखा है। यही तो उसका टेस्ट है। ख्वाहिशात पॉप अप करेंगी हमारे दिल के अंदर ना, ऐसे नहीं होगी चुप करके बैठी रहेंगी, ख्वाहिशात आएंगी, ये कर लूं, मैं भी ये पहन लूं, मैं भी ये खा लूं, मैं भी ऐसे फन कर लूं, कितना मजा आए अगर हम भी ये करें, कितना अच्छा लगता है अगर ऐसे ये देखा जाए, इसमें तो बड़ी लज्जत है। वो स्क्रीन पे है, वो कहीं और है, तो अब क्या है, ये ख्वाहिशात आएंगी और यही तो इम्तिहान है, और इसी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है कि ये उस ख्वाहिश को कंट्रोल करता और फिर अल्लाह के रास्ते पर खुद को घसीट के लेकर आता है। देखिए फरिश्तों का क्यों नहीं ऐसा मकाम, वो क्यों नहीं अशरफुल मखलूकात? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, उनमें अकल रखी थी, मगर उनमें ख्वाहिशात नहीं है। वो नहीं कोई ख्वाहिश करते ऐसी कि हमने ये कर लें, वो हम वहां चले जाएं, ये फन कर लें, उनके अंदर ये है ही नहीं चीज। हैवानात जो है इनमें ख्वाहिशात रखी, इनमें अकल ही नहीं। इंसान जो है ना, इसमें अल्लाह ताला ने अकल भी रखी है, ख्वाहिशात भी रखी। अब जिसकी ख्वाहिशात उसकी अकल के ऊपर गालिब आ जाएंगी, अकल तो कहती है कि ये रास्ता सीधा है, अल्लाह का रास्ता सीधा है, जन्नत का रास्ता है, ये इस पे चलना है, लेकिन ख्वाहिश ने उसको दबा दिया, तो वो हैवानात से भी बदतर है। और जिसकी अकल उसकी ख्वाहिशात पे गालिब आ गई, वो फरिश्तों से भी अफजल है। बंदा जितना ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है, ख्वाहिशात से मतलब ऐसी ख्वाहिशात, मैं नमाज रोजे की ख्वाहिश नहीं कह रही, ऐसी ख्वाहिशात जो अल्लाह ताला की बात से टकराती हैं, जितना इनको कंट्रोल करता है उतना अल्लाह से करीब होता चला जाता है। लेकिन जिसके दिल के अंदर ना गुनाह के लिए ख्वाहिश उठती है, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। यही तो अल्लाह ताला के वली बनने का जरिया है। बस उसको क्या करना है, इस ख्वाहिश को कंट्रोल करना, उस पर अमल नहीं करना, जिससे क्या होगा, दिल दुखी होगा, दिल टूटेगा। जिसका दिल टूटता है ना, फिर वो अल्लाह से करीब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज से ना डरें कि हाय मेरा दिल टूट जाएगा, हाय मेरा दिल तो बड़ा करता है, क्या करूं, बस मैं कर ही लेती हूं। नहीं, दिल टूटेगा तो कुर्ब मिलेगा। वो है ना, तेरा आईना है, वो आईना की शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ये दिल जब टूटता है, एक चीज जैसे शीशा टूटता है ना, इस तरह ये दिल टूटता है जब किरची किरची होता है, ये अल्लाह की नजर में बहुत बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि ये टूटा किस लिए? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए टूटा है ना, तो अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा हो जाता है। जैसे किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि कोहे तूर जो है, जाहिरी तौर पे तो अल्लाह की तजल्ली जब उसके ऊपर आई है, तो आप देखें वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा वो इसलिए टुकड़े टुकड़े हो गया कि मेरे अंदर तक अल्लाह की तजल्ली समा जाए। अगर वो टूटता ना तो ऊपर ऊपर तजल्ली रहती, अंदर दाखिल ना होती, तो वो टूट गया अल्लाह ताला की तजल्ली का। वो इतना वो आशिक था कि उसकी ये चाहत थी कि अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली मेरे जर्रे जर्रे में समा जाए, इसलिए वो टूट टूट चुका। तो जो लोग गुनाहों से बचने के लिए भी कोशिशें करते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं का खून करते हैं, उसके लिए दिल को तो उनका दिल टूट जाता है, चिकना चूर हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह से करीब हो जाते हैं। कोई हराम रास्ते के ऊपर जाने से अपने आप को बचाता है, हालांकि वो जा सकता है, उसका दिल भी कर रहा है, उसके पास सारी फैसिलिटीज है, वो हराम कमाई हो सकती है, वो हराम कोई और रास्ता हो सकता है, वो बेहयाई का कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं जाता? मेरे रब की नाफरमानी हो जाएगी। अब उसने अपने दिल को तोड़ दिया, रब की नाफरमानी नहीं की, तो ये अल्लाह को फिर क्यों ना महबूब होगा? तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया, अफ अंत तकुनु अलैहि वकीला, ए नबी, क्या आप उसके कारसाज बनेंगे? क्या आप उसके जिम्मेदार बनेंगे? क्या आप उसको सीधे रास्ते पर ला सकते हैं, जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया? देखिए ना, आज अफसोस ही होता है, बड़े दुख की बात है कि किसी मुल्क का भी कानून होता है ना, तो लोग उसकी परवाह करते हैं। अब उनको पता है रेड लाइट पे रुकना है, उनको पता है यहाँ पे चोरी नहीं करनी, उनको पता है यहाँ पे टैक्स देना है, उनको पता है पासपोर्ट और वीजा लेके सफर करना है, इतने सारे कवानीन की पाबंदी करते हैं, मगर एक, क्या वो खालिक ही ऐसी जात है? वो मेरा मालिक, वो मेरा खालिक, वो मेरा रब, क्या वो ही ऐसा है जिसके कानून की कोई परवाह नहीं होती? उसका कानून तोड़ना है, अपनी ख्वाहिश नहीं तोड़नी। उसका कानून, उसके मर्जी टूटे तो टूटे, मेरे ही दिल नहीं टूटना चाहिए, मेरी मर्जी नहीं टूटनी चाहिए, इसीलिए परवाह ही नहीं होती कि उसका कानून क्या है, उसकी मर्जी क्या है। कि ना, जिसको, जिसने माननी हो किसी की मर्जी, वो ही परवाह करेगा ना कि वो जानने के इसकी मर्जी क्या है, जिसने मुझे पैदा किया, उसने भी तो कुछ पसंद किया, कुछ नापसंद किया, उसके भी तो कुछ कवानीन है जिंदगी गुजारने के, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ क्या कमाना है, कहाँ से कमाना है, रहना सहना कैसे है, खुशी गमी कैसे, महरम नॉन महरम क्या है, ये सब उसने बताए हैं ना, उसने जिंदगी गुजारने का एक रास्ता बताया ना, एक तरीका बताया है। लेकिन जो इंसान कह दे आई डोंट केयर, बताया होगा, मैं क्या करूं, मैंने तो वही करना है जो मेरा फैसला है, जो मेरी मर्जी है। उसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, जिसने अल्लाह से फैसले ये लेने ही नहीं है ना, फिर वो कैसे कह सकता है मेरा अल्लाह पर ईमान है? उसका तो ईमान अपनी ख्वाहिश नफ्स पे है बस, फिर वो उसी का बंदा है, उसी का गुलाम है, वो अल्लाह का गुलाम नहीं है। फिर ये कहने की सिर्फ बातें हैं कि मैं मुसलमान, वो तो कब से इस्लाम को छोड़ के अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना चुका है। अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊना हुव याकिलून, क्या आप ये समझते हैं कि इनमें से अक्सर सुनते हैं और अकल रखते हैं? आपको ये लगता है कि ये सुनते हैं? इनहुम इल्ला कल अनआम, ये नहीं है मगर जानवरों की तरह, बल हुम अदल्लु सबीला, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं रास्ता भटकने के एतबार से, जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे होंगे। यानी देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको ये लगता है कि ये सुनते हैं और अकल रखते हैं? सुनना तो वो होता है ना कि जब इंसान सुने तो उसको बात समझ आए, जब इंसान सुने तो वो उस चीज को सीरियसली अकल इस्तेमाल करे। लेकिन अगर एक इंसान के सुनने में और जानवर के सुनने में कोई फर्क नहीं, तो वो फिर अकल अनाम ही है ना, कैटल की तरह, इन जानवरों की तरह, गाय भैंस की तरह। आप देख लेना, वो मुहावरा भी है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, क्या मतलब होता है? जब उसके आगे बीन बजाते रहो, उसको कोई पता ही नहीं बेचारी, उसको आप कहें कि मैं तुझे जिबा करने आ रहा हूं, उसको क्या पता, वो ऐसे ही खड़ी रहेगी, उनको नहीं पता, वो अनाम है ना, जानवर है, मवेशी जानवर। अगर इंसान भी ऐसा ही बन जाए, उसके आगे अल्लाह की बात की जाए, रसूल की बात की जाए, कयामत की बात की जाए, हिसाब किताब का बताया जाए, अल्लाह की जन्नत और जहन्नुम की बात की जाए, वो कुटास से मसी ना हो, उसको कोई फर्क ही ना पड़े, तो कला नाम ही है ना फिर वो, बल हुम अदलु सबीला, बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे, उससे भी ज्यादा गए गुजरे, कैसे? अनाम से भी ज्यादा गए गुजरे। वैसे किसी को कह देना कि तुम गाय हो, भैंस हो, तुम क्या हो, या इस तरह, वो गधा घोड़ा को कह दे कोई तो कितना बुरा मानेंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह की बात को सुनी अनसुनी कर दें, कि ऐसे जैसे कानों से टकरा रही हैं बातें, नहीं पता नहीं कहाँ है वो, एक दिमाग किधर है, कोई बात का असर ही नहीं, तो वो अनआम की तरह ही है, पर उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर बल्कि अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया उनसे भी ज्यादा गए गुजरे वो कैसे, इसलिए ये अनआम तो फिर भी देखें, जो अल्लाह ताला ने इसको मकसद इसका बताया है ना, वो अपना मकसद पूरा कर रहा है बेचारा, उसका यही मकसद हयात है जो वो कर रहा है। तुम्हारा तो ये मकसद हयात नहीं है, तुम्हारा तो कुछ और मकसद था, तुम्हें तो तुमने तो ये भी नहीं जानने की कोशिश की तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। बिलीव मी, आप मुसलमानों से इंटरव्यू कहीं लेके पूछें, आप पूछें उनसे सवाल करें कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, कुछ ना कुछ इधर उधर से पकड़ के कुछ ले आएंगे, कुछ ऐसे ही कुछ बोलना शुरू कर देंगे, क्या मकसद है आपका दुनिया में आने का, पूछिए जरा, नहीं पता होगा, आए बाएं शाएं करेंगे। अल्लाह अकबर, तो उसने तो अपना मकसद हयात तो जाना, वो उसके मुताबिक तो चल रहा है ना, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है, तो इसका मतलब बलहुमा दल तो हो गए ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लहुम कुलूबुन ला यफ्कहूना बिहा, उनके पास दिल है उनसे समझते नहीं, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंखें हैं देखते ही नहीं है, लहुम आदानुन ला यस्माउना बिहा, उनके पास कान है मगर कानों से सुनते ही नहीं, उलाए का कल अनआम बल हम अतल, वो तो चौपाइयों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं गुमराही में, लाए का मुल गाफिल, वो गाफिल है, गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, अकल पे पर्दे पड़ गए, ऐसी गफलत है कि उठने का नाम ही नहीं लेते, सोए पड़े। आप देखें जानवर भी सुभान अल्लाह, यूट्यूब पे भी उन्होंने डाली हुई है वो वीडियो, एक कपल था न्यूजीलैंड का शायद था, उन्होंने कोई एक शेर का बच्चा देखा, नहीं शेर एक देखा वैशी जानवर है, शेर का बच्चा देखा वो पिंजरे के अंदर था, तो उनको बड़ा तरस आया, वो ले आए उसको, उन्होंने उसको इतना प्यार से पाला रखा उसको अपने घर में, और इतनी उसको मोहब्बत दी, इतनी उसकी केयर की, लेकिन जब वो बड़ा हो गया जाहिर है फिर वो अपने पास नहीं रख सकते थे, तो वो अफ्रीका में उसको छोड़ के आ गए जंगल में, तो सुभान अल्लाह उसके बाद एक साल गुजर गया तो उनका दिल किया कि हम जाके उसको मिलें, देखें जो हमारे पास था, क्रिश्चियन शायद उसका नाम था उस शेर का, तो वो वहां गए, उनको लोगों ने कहा कि नहीं आप नहीं अब जा सकते, माहरीन ने कहा कि वो तो अब शेर जो है बड़ा हो चुका है, अब वो अपने जो वहां का जो शेरों का पैक है उसका सरबराह है, और वो तो अब वैसी जानवर बन चुका है, वो अब आपको कहाँ उसको याद होगा, और आप देखिए ना ये तो दरिंदे हैं, ये तो कोई कुत्ता या इस तरह बिल्ली या जो अपने मालिकों को पहचानते हैं वैसे थोड़ी होते हैं, तो सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, वो वीडियो देखने वाली है कि जब वो वहां पे गए और वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढूंढा के कहाँ पे है, तो वो जब शेर आया है वो कैसे उनके साथ लिपट रहा है, ऐसे उनको चाट रहा है और ऐसे उनके ऊपर चढ़ गया, इतना प्यार कर रहा है, जैसे वो ही सोचती थी कोई एक जानवर है उसको भी जिसने उसको थोड़ा अरसा पाला उसके साथ कितनी मोहब्बत है, उसको भूला नहीं है। इंसान तुम दुनिया में आके रोजाना, हाँ रोजाना तो क्या मैं कहूँ, हर लम्हे हर सेकेंड अपने रब की नेमतों को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इनसे फायदा उठा रहे हो, सांस देखो हर पल हम सांस ले रहे हैं, वो तो उसको छोड़ आए थे एक साल तक नहीं देखा लेकिन वो भूला नहीं, कैसे वो आसे आके उनसे चिमट रहा है, कैसे उनके पास भागा हुआ है, इंसान ना तुम दुनिया के मेले में आ गए अपने रब को ही भूल कर, जबकि तुम कॉन्स्टेंटली उसकी नियमतों को देख रहे हो इस्तेमाल कर रहे हो, हर तरफ उसकी निशानियां बिखरी पड़ी हैं जो तुम्हें उसकी याद दिलाती हैं, फिर भी भूल गए, इतना तुम्हें दुनिया ने कंज्यूम कर लिया, वो तो जंगल में रह के अपने जैसे शेरों में रह के उनको नहीं भूला, वो तो दरिंदा था, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास अक्ल है समझ है, तुम भूल गए कोई तुम्हारा खालिक भी तुम्हारा मालिक भी, तुम्हें खिलाने पिलाने वाला, तुम्हें ये सांस देने वाला, ये जिंदगी देने वाला, ये औलाद, ये छत, ये बसारत, ये बसीरत, ये समात, ये तुम्हारे दिल का धड़कना, ये तुम्हारे पेट का चलना, ये तुम्हारे हाथ पैर का हरकत करना, सब उसके दम से है। तुम उसको ही भूल गए। वो जानवर होते भी कुछ चंद सालों की इस शफकत को ना भुला सका, और कैसे प्यार करता है। और तुम सारी जिंदगी मां के पेट से भी पहले से उस रब की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हो। मां के पेट में उसने तुम्हारी निगहदाश्त की। जितनी इंसान की लाइफ है उतने ही अल्लाह ताला के एहसानात जाता है, और हर पल उसकी नेमतों को यूज करके भी उसी को नहीं पहचानते, उसी से दूर भागते, उसी की तरफ नहीं आते। अल्लाहु अकबर। अगर कोई वफादारी सीखनी है तो जानवर से ही सीख लेते, जानवर भी हमसे बेहतर होगा वफादारी में। एक शेर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वफादारी, उसी जिबिलत में नहीं है ना, फिर भी वो वफादार है। एक कुत्ते को देख ले, एक कोई भी जानवर को देख ले, हम कहते हैं इनके अंदर अक्ल शऊर नहीं, इनको क्या पता। आ नहीं है, फिर भी वो मालिक को पहचानते। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो अक्ल शऊर है ना, या उससे भी गए गुजरे हो जो जानवर है, उसकी सतह से भी ज्यादा नीचे गिर गए। तो अल्लाह ताला ने शिकवा किया है कि जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। तो पहले जानवर ये क्यों नहीं कह दिया गया जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे, बल्कि ये कहा गया ये जानवर है, फिर उस फरमाया उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, इसलिए कि जानवर है कि जब सुनते ही नहीं। इसीलिए तो जहन्नुम के अंदर सूरह मुल्क में आता है ना, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, काश के हम सुन लेते और अकल रखते। यहां पे देखिए कहा गया कि आप क्या समझते हैं कि इनमें से अक्सरियत सुनती भी है या अकल भी रखती है, वही वाली बात है, सुनना ही नहीं है। हम सुन ना लें कहीं हमारे कानों में ना चली जाए बात, अगर जाती भी है तो ऐसे कि एक से गई तो दूसरे से निकल गई, समझना ही नहीं, अनाम की तरह बिल्कुल। अब गाय भैंस की कानों से भी तो आवाजें टकराती हैं, उसको कोई कह रहा है मैं छुरी लेकर आ रहा हूं तुझे जिबा करने, टकरा रही है ना आवाज, लेकिन वहीं की वहीं खड़ी भी ऐसे देखती जा रही। तुम भी ऐसे हो गए कि जिस रब के साथ सबसे ज्यादा वफादारी निभानी चाहिए थी उसी के बागी बन गए। ये बगावत है जब उसकी बात से, जब उसके हुक्मों से भागते हो और उनको तोड़ते हो, तो ये बगावत है, और धड़ल्ले से तोड़ते हैं कि वी डोंट केयर, और हम तो ये करना ही नहीं चाहते, और इसको दकियानूसी और बैकवर्ड चीजें समझते हैं। ये बगावत है, कभी सोचा भी है किससे बगावत कर रहे हैं? आप एक मुल्क के कानून से बगावत करके दिखाएं, जेल में पड़े होंगे, नहीं जुर्रत करता कोई, पता है कि नहीं ये कानून है यहाँ का, मैं बगावत नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ही का कानून ऐसा रहेगा जिसके ऊपर बगावतें। और कितने बागी हैं, हर तरफ बागी फिर रहे हैं अल्लाह के। लेकिन दुनिया के कानून तो फौरी हरकत में आ जाते ना, अल्लाह ताला सबर करता है, उसका सबर बहुत ज्यादा, वो असबूर है, वो देखता है सबर करता है, देखता है सबर करता है, हालांकि वो पकड़ने की ताकत रखता है। दुनिया का कानून तो शायद शायद इतना ताकतवर ना हो कि हर एक मुजरिम को पकड़ सके, लोग छुप भी जाते हैं, लोग कहीं भाग भी जाते हैं, अरसा दराज तक पकड़े नहीं जाते, चकमा भी दे देते हैं अदालतों में जाके। अल्लाह का कानून तो ऐसा नहीं, तो खुद विटनेस है हर चीज पे, तो वो पकड़ भी सकता है, ताकत है उसके अंदर, वो देख भी रहा है, वो खुद गवाह है, फिर नहीं पकड़ता तो उसकी ढील को खुली छुट्टी ना समझो। फिर जब वो एक दफा पकड़ता है ना, तो इन कौमों से सीखो कि फिर किसी को मोहलत नहीं देता, फिर उस वक्त चीखने का फायदा नहीं होता, उस वक्त रोने का कोई हासिल नहीं है,